एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आपका। हम सब कार्ल मार्क्स का नाम जानते हैं, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी की सियासत और समाज पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस मार्क्सवाद को दुनिया जानती है उसे गढ़ने में एक दूसरे शख्स का हाथ था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा परछाई में रहा। आज हम उसी शख्स की कहानी में उतरेंगे, फ्रेडरिक एंगल्स।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई अकेडमिक बहस नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि विचार कैसे बनते हैं, कैसे फैलते हैं और कभी कभी कैसे बदल दिए जाते हैं।
हमारी आज की जो चर्चा है वो टेरिल कार्वर के काम पर आधारित है, जो मार्क्स और एंगल्स के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं।
और कार्वर हमसे एक बुनियादी सवाल पूछते हैं ना?
हाँ, उनका सवाल है, क्या एंगल्स सिर्फ मार्क्स के दोस्त, फाइनेंसर और कह सकते हैं नंबर टू थे, या कहानी कुछ और ही है, एक तरह से विलेन भी?
तो चलिए इस बौद्धिक गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि परछाई के पीछे असल में कौन खड़ा था।
शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है। टेरिल कार्वर कोई आम इतिहासकार नहीं है। वो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में राजनीतिक सिद्धांत के प्रोफेसर हैं और मार्क्स एंगल्स की दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं।
और उनका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं बनाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
कार्वर तो खुद को एक बौद्धिक पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब वो पुराने जर्मन दस्तावेजों, चिट्ठियों की धूल झाड़कर उस असली एंगल्स को खोजने की कोशिश करते हैं जो मार्क्सवाद के उस भव्य स्मारक के नीचे कहीं दब गया है।
ये बहुत जरूरी बात है। कार्वर का काम हमें बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाना सिखाता है। वो हमें ये नहीं बताते कि एंगल्स अच्छे थे या बुरे, बल्कि ये दिखाते हैं कि जो व्यक्ति हमें इतिहास में सेकंड इन कमांड जैसा लगता है, असल में उसकी कहानी कहीं ज्यादा जटिल, महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो सकती है।
वो हमें स्रोत तक वापस ले जाते हैं।
बिल्कुल।
तो कार्वर की किताब का मुख्य तर्क क्या है, अगर एक लाइन में कहें तो?
एक लाइन में कहें तो, एंगल्स को मार्क्स की परछाई से बाहर निकालो। जो पारंपरिक कहानी हम सुनते हैं कि एंगल्स मार्क्स के वफादार दोस्त थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री की कमाई से मार्क्स का घर चलाया और मार्क्स की मौत के बाद उनके अधूरे काम को पूरा किया, वो सच तो है पर अधूरा सच है।
तो फिर पूरा सच क्या है? कार्वर क्या नया बता रहे हैं?
कार्वर एक ज्यादा गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, सोचिए वो मार्क्सवाद जिसे दुनिया जानती है, एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और लगभग भविष्य बताने वाला सिद्धांत, उसे ये रूप दिया किसने?
हाँ, क्योंकि मार्क्स के अपने लेख तो काफी बिखरे हुए थे, आलोचनात्मक थे, कई बार अधूरे भी थे।
एकदम सही। कावा का तर्क है कि मार्क्स के विचारों को एक साफ सुथरे सिस्टम या विश्व दृष्टि में बदलने का काम एंगल्स ने किया, खासकर 1883 में मार्क्स की मौत के बाद।
अच्छा, तो मतलब मार्क्स ने कच्चा माल दिया और एंगल्स ने उससे
पूरी इमारत खड़ी कर दी। ये किताब हमें एंगल्स के जीवन के विरोधाभासों से भी मिलाती है।
हाँ, एक अमीर उद्योगपति का बेटा जो मजदूर वर्ग का हीरो बन गया,
और एक क्रांतिकारी विचारक जो मैनचेस्टर में 20 साल तक एक सूती मिल चलाता रहा
सिर्फ इसलिए ताकि मार्क्स अपना काम कर सके। ये वाकई अनोखी कहानी है।
चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो एंगल्स के पास थी और मार्क्स के पास नहीं, जमीनी अनुभव। एंगल्स एक अमीर कपड़ा व्यापारी के बेटे थे, तो उन्हें विरासत में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूंजीवाद को अंदर से देखने का मौका भी मिला।
ये एक बहुत दिलचस्प फर्क है। जहां मार्क्स लंदन की एक लाइब्रेरी में बैठकर पूंजीवाद की चीरफाड़ कर रहे थे रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए,
वहीं एंगल्स मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में उसे अपनी आंखों से जी रहे थे। जब उन्हें 1840 के दशक में परिवार का कारोबार संभालने के लिए भेजा गया, तो उन्होंने सिर्फ मुनाफे का हिसाब नहीं देखा, उन्होंने देखा कि फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं, मजदूर किन भयानक हालात में रहते हैं,
और बाजार की वो गलाकाट प्रतियोगिता क्या होती है।
हाँ, उनके लिए ये सब थ्योरी नहीं थी, ये एक रोजमर्रा की हकीकत थी।
और शायद इसी अनुभव ने उनकी पहली महान किताब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड को जन्म दिया। ये किताब तो मार्क्स से मिलने से पहले ही आ गई थी, है ना?
हाँ, और कावा के मुताबिक ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, ये उस दौर के हिसाब से समाजशास्त्र का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी काम था। एंगल्स ने घूम घूम कर देखा, सरकारी रिपोर्टें पढ़ी, आंकड़े जुटाए और औद्योगिक क्रांति की मानवीय कीमत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसने खुद मार्क्स को हिलाकर रख दिया था।
कावर कहते हैं कि मार्क्स के ऊंचे ऊंचे सैद्धांतिक विश्लेषण को जमीनी हकीकत और नैतिक गुस्सा इसी किताब से मिला।
बिल्कुल, यहीं से उनके विचारों का संगम शुरू हुआ। एंगल्स ने जमीनी हकीकत दी
और मार्क्स ने उसे एक बड़े ऐतिहासिक ढांचे में फिट किया।
हाँ, लेकिन कावा का तर्क इससे भी आगे जाता है। वो कहते हैं कि एंगल्स सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि मार्क्सवाद के वास्तुकार थे।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें?
कोशिश करती हूँ। देखिए, मार्क्स ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की। उनका फोकस इंसानी समाज और इतिहास पर था।
मतलब इतिहास वर्गों के संघर्ष से आगे बढ़ता है और समाज का आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है।
सही, ये उनका एक तरीका था, एक औजार था जिससे वो सिर्फ समाज को समझ रहे थे।
ठीक है, तो मार्क्स का औजार सिर्फ इतिहास और समाज के लिए था, एंगल्स ने क्या अलग किया?
एंगल्स ने उस औजार को लिया और उसे एक यूनिवर्सल चाबी बना दिया। उन्होंने कहा कि ये द्वंद्वात्मक नियम सिर्फ समाज पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर लागू होते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,
सब कुछ इन्हीं नियमों से चलता है।
हाँ, सब कुछ। पानी का भाप बनना, बीज का पौधा बनना, सब। उन्होंने मार्क्स के एक सामाजिक सिद्धांत को एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना दिया, एक व्यापक विश्व दृष्टि में बदल दिया, जिसे जर्मन में वेल्टन शाउंग कहते हैं।
वेल्टन शाउंग मतलब दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया, एक मुकम्मल फलसफा।
तो मार्क्स एक सामाजिक आलोचक थे और एंगल्स ने उन्हें एक वैज्ञानिक दार्शनिक बना दिया। बिल्कुल, और ये विचार उनकी किताब एंटी ड्यूरिंग में सबसे साफ नजर आता है। ये किताब एक दूसरे विचारक यूजीन ड्यूरिंग के जवाब में लिखी गई थी, लेकिन इसने एंगल्स को पहली बार मार्क्स और अपने विचारों को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक पैकेज में पेश करने का मौका दिया।
यहीं से मार्क्सवाद एक इज्म यानी एक विचारधारा के रूप में पैदा हुआ।
एकदम।
तो एंगल्स ने विचारों को एक सिस्टम में ढाला, लेकिन किसी भी विचार को फैलाने के लिए उसे बेचना भी पड़ता है। लोगों को ये कैसे यकीन दिलाया जाए कि आपका समाजवाद बाकी सबसे बेहतर है?
बहुत बढ़िया सवाल, और यहीं पर एंगल्स की मार्केटिंग की प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने अपने बहुत ही मशहूर पैम्फलेट सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एक कमाल का वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि समाजवाद दो तरह का होता है,
यूटोपियन और साइंटिफिक,
यानी काल्पनिक और वैज्ञानिक। सही। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियो जैसे पुराने समाजवादी यूटोपियन थे। वो अच्छे लोग थे, अच्छे सपने देखते थे, एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, लेकिन उनके विचार हवा हवाई थे।
वो बस नैतिकता की अपील करते थे।
हाँ, और फिर उन्होंने मार्क्स और अपने विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद के तौर पे पेश किया।
और वैज्ञानिक का मतलब था कि ये किसी की इच्छा या सपने पर नहीं बल्कि इतिहास के ठोस वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित है।
बिल्कुल, जैसे न्यूटन ने गति के नियम खोजे, वैसे ही हमने समाज के विकास के नियम खोज लिए हैं।
अब सोचिए, एक मजदूर आंदोलन के लिए ये कितना शक्तिशाली विचार था।
हाँ, इसका मतलब था कि हमारी जीत सिर्फ हमारी इच्छा नहीं बल्कि इतिहास की गारंटी है। हम इतिहास के सही पक्ष में हैं और पूंजीवाद का खत्म होना तय है।
कार्वर कहते हैं कि ये एक आंदोलन खड़ा करने के लिए शानदार रणनीति थी।
थी तो, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी।
और वो कीमत क्या थी?
सरलीकरण। मार्क्स के विचारों की जो गहराई थी, जो जटिलता थी, वो इन आसान कानून जैसे फॉर्मूलों में कहीं खो गई। एक आलोचनात्मक पद्धति एक कट्टर सिद्धांत में बदलने लगी।
और फिर 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो एंगल्स की भूमिका पूरी तरह बदल गई होगी।
हाँ, वो सिर्फ सहयोगी नहीं रहे बल्कि एक तरह से मार्क्स की विरासत के अकेले वारिस बन गए।
अकेले और निर्विवाद वारिस।
बिल्कुल, मार्क्स अपने पीछे हजारों पन्नों के नोट्स, अधूरे लेख और पांडुलिपियां छोड़ गए थे, और इन सबको समझने की चाबी सिर्फ एंगल्स के पास थी,
क्योंकि वो मार्क्स की मुश्किल हैंडराइटिंग पढ़ सकते थे और उनके सोचने के तरीके को समझते थे।
हाँ, और इसमें सबसे बड़ा काम तो कैपिटल को पूरा करना रहा होगा। मार्क्स तो सिर्फ पहली जिल्द ही प्रकाशित कर पाए थे।
हाँ, और एंगल्स ने सालों की मेहनत करके मार्क्स के बिखले हुए नोट से कैपिटल के खंड 2 और 3 को तैयार और प्रकाशित किया। लेकिन कावर यहाँ जोर देकर कहते हैं कि ये सिर्फ एडिटिंग नहीं थी।
नहीं, ये व्याख्या का एक बहुत बड़ा काम था। सोचिए, आपको ये तय करना है कि कौन सा ड्राफ्ट फाइनल है, इन टुकड़ों को किस क्रम में लगाना है, और जहां कुछ लिखा ही नहीं है वहां क्या करना है।
मतलब एंगल्स के फैसलों ने तय किया कि दुनिया मार्क्स के सबसे बड़े काम को कैसे पढ़ेगी और समझेगी।
बिल्कुल, उन्होंने मार्क्स के काम को शायद उससे ज्यादा मुकम्मल और व्यवस्थित दिखाया जितना वो असल में था।
और सिर्फ किताबों में ही नहीं, असल दुनिया में भी वो मार्क्सवाद के आखिरी निर्णायक बन गए।
हाँ, जर्मनी, फ्रांस, रूस, हर जगह के समाजवादी जब किसी बात पर बहस करते कि मार्क्स का असली मतलब क्या था, तो वो लंदन में बैठे एंगल्स को चिट्ठी लिखते थे और एंगल्स का जवाब ही अंतिम फैसला माना जाता था।
उन्होंने मार्क्स को एक आइकन बना दिया।
सही कहा।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ बड़े संदेश साफ नजर आते हैं। पहला तो यही कि नंबर दो की धारणा को तोड़ना होगा।
हाँ, एंगल्स सिर्फ सहायक नहीं थे, वो खुद एक मौलिक विचारक थे, खासकर समाजशास्त्र और सैन्य रणनीति जैसे विषयों में।
दूसरा बड़ा संदेश मार्क्सवाद के निर्माण का है।
बिल्कुल, जिसे हम आज मार्क्सवाद कहते हैं, एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विचारधारा, वो काफी हद तक एंगल्स की रचना है। उन्होंने एक आलोचनात्मक नजरिए को एक राजनीतिक आंदोलन के हथियार में बदल दिया।
लेकिन क्या इस प्रक्रिया में उस नजरिए की धार कुंद हो गई, ये एक बड़ा सवाल है।
तीसरा संदेश मुझे उनके जीवन के विरोधाभास में दिखता है, पूंजीपति क्रांतिकारी।
हाँ, वो लोमड़ी का शिकार भी करते थे और क्रांतिकारियों को फंड भी देते थे। वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे जिसे वो उखाड़ फेंकना चाहते थे,
और शायद इसी वजह से वो उसे इतनी गहराई से समझते थे जितना कोई बाहरी आलोचक नहीं समझ सकता।
और आखिरी संदेश विरासत की ताकत के बारे में।
एंगल्स ने मार्क्स के काम को गुमनामी में खोने से बचाया, ये सच है, लेकिन उसे लोकप्रिय बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने उसे कैसे सिद्धांत में बदल दिया जिसे शायद मार्क्स खुद भी नहीं पहचान पाते।
ये दिखाता है कि किसी विचार को बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि उसकी व्याख्या और प्रसार कैसे होता है।
कावर एंगल्स के कुछ विचारों पर भी रोशनी डालते हैं जो उनके अपने मौलिक योगदान को दिखाते हैं, जैसे उनका ये कहना कि राज्य को खत्म नहीं किया जाता, वो मुरझा कर खत्म हो जाता है।
द स्टेट विदर्स अवे, इसका क्या मतलब है?
ये क्रांति के बाद की दुनिया के बारे में उनकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है। वो कह रहे थे कि क्रांति के अगले ही दिन आप सरकारी दफ्तरों पर ताला नहीं लगा सकते, बल्कि जैसे जैसे समाज में वर्ग भेद खत्म होंगे, पुलिस, कोर्ट, सेना जैसी संस्थाओं की जरूरत अपने आप कम होती जाएगी और राज्य धीरे धीरे अप्रासंगिक होकर खुद से खुद खत्म हो जाएगा।
ये एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं।
बिल्कुल।
एक और दिलचस्प विचार है, स्वतंत्रता आवश्यकता की पहचान है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है।
हाँ, पर इसका मतलब गहरा है। एंगल्स कह रहे थे कि असली आज़ादी प्रकृति या समाज के नियमों को नज़रअंदाज करने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और फिर उनके दायरे में रह के काम करने में है।
अच्छा, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को खत्म नहीं कर सकते, ये एक आवश्यकता है।
हाँ, लेकिन इसी नियम को समझकर हम हवाई जहाज बना सकते हैं और उड़ सकते हैं। नियमों को समझना ही हमें आज़ाद करता है।
ये तो काफ़ी व्यवहारिक फ़लसफ़ा है। तो इन सब बातों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? हम एंगल्स की कहानी से क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी सीख आलोचनात्मक सोच के बारे में है। ये कहानी हमें बौद्धिक हीरो पूजा से बचाती है। ये सिखाती है कि किसी भी इज्म को आंख बंद करके स्वीकार ना करें, हमेशा स्रोत तक वापस जाएं और पूछें कि ये विचार हम तक किस रूप में पहुंचाया गया है और किसके द्वारा।
मतलब जिस मार्क्सवाद पर आज दुनिया बहस करती है वो अक्सर एंगल्स का सरलीकृत संस्करण होता है।
हाँ, ज्यादातर मामलों में।
दूसरी सीख नंबर दो की ताकत को पहचानने की है। हर संगठन में, हर आंदोलन में एक विजनरी होता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा शख्स भी होता है जो उस विजन को हकीकत में बदलता है,
उसे व्यवस्थित करता है और उसे लोगों तक पहुंचाता है। एंगल्स ऐसे ही व्यक्ति थे। यह हमें सिखाता है कि महान विचार अकेले पैरा नहीं होते, उन्हें पालने पोसने वाले भी उतने ही जरूरी होते हैं।
और तीसरी बात जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगती है वो है विचारों की ब्रांडिंग।
हाँ, ये आज के लिए बहुत प्रासंगिक है।
एंगल्स ने कैसे मुश्किल एकेडमिक विचारों को एक आसान, आकर्षक और वैज्ञानिक पैकेज में बदला, ये आज के पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स और मार्केटिंग गुरुओं के लिए एक केस स्टडी है।
ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी गढ़कर विचारों को एक जन आंदोलन में बदला जा सकता है।
इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो यही है कि इतिहास के पर्दे के पीछे कितनी कहानियां छिपी होती हैं। हम बड़े बड़े नामों को याद रखते हैं, लेकिन अक्सर वो लोग जो विचारों को असली आकार देते हैं वो परछाई में ही रह जाते हैं। एंगल्स की कहानी हमें इतिहास को ज्यादा गहराई से देखने के लिए मजबूर करती है।
और मेरे लिए अंतिम विचार विरासत के सवाल से जुड़ा है। एंगल्स ने मार्क्स के काम को बचाया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है, क्या कोई भी क्रांतिकारी विचार बिना सरल हुए बड़े पैमाने पर फैल सकता है, और इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा का कितना हिस्सा खो जाता है। एंगल्स की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि इस बात की कहानी है कि विचार कैसे जीते हैं, बदलते हैं और कभी कभी अपने बनाने वाले से भी बड़े हो जाते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।